گزشتہ کافی عرصے سے وطن عزیز پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. وطن عزیز پاکستان کی گلی کوچے شاہراہیں تعلیمی ادارے مدارس حتیٰ کہ عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. اگرچہ اس دہشت گردی کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ بھی ہیں لیکن زیادہ نقصان ملک کے اندر سے پہنچایا جا رہا ہے. دہشت گردی کی یہ لہر 9/11 کے بعد شروع ہوئی اور وار آن ٹیرر کے نام پر مذہبی دہشت گردی میں بدل گئی. محب وطن ملت تشیع کا قتل عام کیا گیا. ایسے میں مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع کیا. حالیہ حکمران جماعت کی طرف سے منعقد کردہ آل پارٹیز کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائیں گے. اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں ملت تشیع کی نمائندہ جماعتوں کا کیا موقف ہے.
سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ ان موضوعات پر آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنا نقطہ نظر اور اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کر سکیں.
اس ماحول کے اندر کہ جب انسان جو ہے وہ حقائق سننے کے لیے جو ہے وہ بیتاب ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے سامنے حقیقت واضح اور حقائق اس کو بتائے جائیں, اس زمانے کے اندر آپ نے جو کردار ادا کیا اور یہ سلسلہ شروع کیا ہے میڈیا کا, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے سلسلے سے جو ہے لوگوں کو حقیقت پہنچے گی اور حقائق لوگوں کو جو ہے پہنچائے جائیں گے. انشاءاللہ پروردگار آپ کو اور آپ کی ٹیم کو کامیابی عنایت فرمائے.
تو جہاں تک تعلق ہے طالبان سے مذاکرات کی جو بات چل رہی ہے اور اے پی سی جو بلائی گئی ہے ان میں تمام مختلف سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کے ساتھ طالبان سے مذاکرات کرنے کی بات کی ہے, تو دیکھیے اس حوالے سے مجلس وحدت مسلمین کا موقف واضح ہے کہ مذاکرات جو ہے نا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں. مذاکرات کبھی دہشت گردوں کے ساتھ, وہ جماعت جو کالعدم جماعت ہے, جو بینڈ جماعت ہے, جس نے 40,000 پاکستانیوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی ہے اور ان پر ظلم کیا ہے, وہ دہشت گرد ہے. ریاست کا کام یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ ان کا قلع کما کیا جائے, ان کو ختم کیا جائے, دہشت گردی کو ختم کیا جائے. طالبان کوئی پاکستان کے سٹیک ہولڈر نہیں ہے.
دیکھیں دو ٹوک اور واضح بات ہے, پاکستان کے اندر لوگوں کی جان مال کا تحفظ ضروری ہے. لوگوں کی جان مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت طاقت اور قوت کے زور پر اقدامات کرنے کے بعد لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنا سکتی ہے تو طاقت اور قوت کا استعمال کریں, لیکن اگر طاقت اور قوت کا استعمال نہیں اور تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیاں یہ بات طے کر کے اس نقطے پر پہنچتی ہیں کہ نہیں بھائی مذاکرات کا سلسلہ ہونا چاہیے اور ان حضرات سے مذاکرات کی ٹیبل ٹاک کے ذریعے جو ہے بات کو آگے بڑھایا جائے تاکہ لوگوں کی جان مال عزت کا تحفظ کیا جا سکے. ہمارا مسئلہ لوگوں کی جان مال کا تحفظ ہے. ہم اس ملک میں مذہبی جماعت ہیں, ہمارا موقف وہی ہے جو پاکستان میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا موقف ہے, کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس پاکستان کا حصہ ہیں. ہم کوئی ایسا اقدام, کوئی ایسا موقف جس سے ہم لوگ پاکستان کے دیگر لوگوں سے اور لوگوں سے کٹ کے الگ کھڑے ہو جائیں ایک سمت میں جا کر, ہمارا موقف وہ نہیں ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان قائم ہو, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی ہو, اب وہ مذاکرات کے ذریعے ہو یا طاقت اور قوت کے ذریعے, یہ حکومت کو طے کرنا ہے.
مذاکرات ہوتے ہیں سٹیک ہولڈر کے ساتھ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو وکٹم ہیں ان کو تو ریاست نے اعتماد میں نہیں لیا. یہ جو فیصلہ ہوا ہے طالبان سے مذاکرات کی جو بات ہوئی ہے ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اس میں ایک بڑی متاثرین جو ہیں اس دہشت گردی کے وہ پاکستان میں ملت تشیع ہے, اور کہیں پر اس اے پی سی میں ملت تشیع کی نمائندگی نہیں تھی. یہ ایک ناانصافی ہوئی ہے.
अक्सर पाकिस्तान की जमातें, मजहबी जमातें और सियासी जमातें ये फैसला कर चुकी हैं कि जो है वो मुजाकरात के जरिए मसाइल हल किए जाएं, और प्रेशर भी इसी बात का है। लेकिन सवाल यह कि मुजाकरात किससे किए जाएं? अगर एक ग्रोह है, दो ग्रोह है, तीन ग्रोह है, कौन सा ग्रोह है? 30-35-40 ग्रोह हैं जिससे मुजाकरात किए जाएं। हमारा मुतालबा सिर्फ यह है कि मुजाकरात उनसे किए जाएं जो बाइख्तियार लोग हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, जो अमन अमान कायम करने के लिए आपको जमानत दे सकते हो।
क्या गारंटी है, क्या जमानत है कि वो दहशतगर्द जो इतनी बड़ी कार्रवाइयां कर रहे हैं कि उन्होंने स्कूलों को उड़ाया है, उन्होंने मदारिस को, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, मार्केटों को, हर जगह पे ब्लास्ट किए हैं। पाकिस्तान में ईसाई बिरादरी भी महफूज नहीं, हिंदू भी, सिख भी और शिया सुन्नी, कोई इनके जुल्म से महफूज नहीं है। तो उनसे क्या तवक्को है कि वो मुजाकरात में जो वो बात मानेंगे, आया उस पर अमल भी करेंगे या नहीं करेंगे? ये एक सवाल है।
वरना यहाँ तो बहुत सारे ग्रोह हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि किससे मुजाकरात होंगे। और अभी तक आवाम भी परेशान है, सियासी जमातें, खुद वजीर आजम भी परेशान है। लेकिन हमारा भी मुतालबा वही है कि मुजाकरात के जरिए या जिस कोई भी तरीका कारो, लेकिन लोगों की जान माल का तहफ़ यकीनी बनाया जाए।
40 ग्रुप्स हैं इस वक्त तालिबान के, सारे तालिबान ये सोच, तालिबानी सोच, ये जुल्म की सोच है, ये नफरत की सोच है, ये मुल्क के गद्दार हैं, ये दुश्मन है। आईने पाकिस्तान को इन्होंने तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के रेट को इन्होंने चैलेंज किया है। लिहाजा किसी सूरत में मुजाकरात करना इनके साथ कोई माना नहीं रखता। पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटेरियन जमशेद दस्ती साहब, उनके बारे में सोशल मीडिया पर भी ये बातें सारी आ चुकी हैं कि ना वो कोई पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में एक बिल पेश करने वाले हैं, ना मुझसे साहबा बिल। तो देखिए, इस हवाले से पहली बात तो यह है कि जमशेद दस्ती साहब ये बिल जो पेश कर रहे हैं, ये बिल जो देवबंदी मकतब फिक्र से जिनका ताल्लुक है, ये पूरे देवबंद मकतब फिक्र का मौकफ नहीं है। उनमें से सिर्फ एक धड़े का है जो हमेशा नफरत की जबान इस्तेमाल करते हैं, एक कालादम जमात के लोग हैं जो इसकी बैक पे हैं और जिनके एजेंडे पे सारा काम हो रहा है।
मैं ये समझता हूँ तमाम सहाबाए कराम का एहतराम करते हैं, और ये हमारा नहीं बल्कि मराजों का फतवा है। मुकद्दसात, किसी की भी मुकद्दसात हो उसका एहतराम करना चाहिए। हम भी तमाम मुकद्दसात का सबके एहतराम करते हैं। जहाँ तक ये बिल की बात रही, मैं ये समझता हूँ बिल जो है अगर सेनेट में पेश होता है तो पाकिस्तान में एक नया फितना ईजाद होगा।
ये एक साजिश है पार्लियामेंट की उस फजा को मुकद्दर करने के खिलाफ, एक साजिश है जो जमशेद दस्ती के जरिए जिसको अमली बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर दूसरी बात जो है कि तोहीन साहबा, जब तक आप तोहीन की डिफिनेशन नहीं करेंगे, तोहीन है क्या? तोहीन रिसालत का कानून बना हुआ है पाकिस्तान का, उस कितना उससे नाजायज इस्तेफादा किया जा रहा है। लोग अपने जाती मफादात के लिए जिससे दुश्मनी होती है वो उसको तोहीन रिसालत का इल्जाम लगा के उसको सजाए मौत दिलवा देता है, जेल चला जाता है और सारी जिंदगी के लिए उसका मसला बन जाता है। तो लिहाजा तोहीन की डेफिनेशन होनी चाहिए। तोहीन क्या है, फिर सहाबी कौन होता है? इसमें मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अपना नुक्ता नजर है, अपना मौकफ है कि सहाबी कौन है। लिहाजा ये बिल जो है इससे मसाइल और बढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर।
इससे पहले जितने बिल पेश हुए वो बिल किसी कानून साजी के हवाले से पेश नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान ने एक अनारगी, एक फितने को मचाने के लिए, उठाने के लिए जो वो बिल पेश किया गया। और उससे पहले भी जो जिन लोगों की पुष्पनाई पर आज ये बिल पेश किया जा रहा है, वो उनको हम जो है वो ग्रोह को जो है हम शिकस्त दे चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ जिन लोगों ने अगर ये इकदाम करने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा बल्कि मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ ये भी एक साजिश है।
सोशल मीडिया पे इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे इन दिनों जो देखने में आ रहा है कि मनफी प्रोपेगंडे बाज ऐसे फेक आईडीज से शिया शख्सियात के खिलाफ, शिया उलमा के खिलाफ, शिया जमातों के खिलाफ, ये मेरे ख्याल में जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो एक तीसरी कुव्वत है जो हमें आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है।
देखिए, जहाँ तक ये सोशल मीडिया के हवाले मैंने देखा, मैंने भी बहुत सारी फेसबुक पे और दूसरी जगह पे जाकर देखा है लोगों की एहानत और तोहीन। मैं ये समझता हूँ कि किसी की तोहीन करना, किसी की एहानत करना अखलाकन शरन दोनों हवाले से जायज़ नहीं है, हराम है। किसी पर तोहमत लगाना, किसी पर बोहतान लगाना, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल नाजायज काम है शरण अखलाकन।
न शरीयत इसकी इजाज़त देती है, न अखलाकियात इसकी इजाज़त देते हैं, और न हमारा ज़मीर और विजदान। अगर बाज़मीर कोई इंसान है तो कभी भी इस तरह के उलमा के हवाले से इस तरह की तोहीन हमेज रवैये और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
और लोगों को चाहिए कि कौम के अंदर वहदत ईजाद करने के लिए ऐसे इकदाम करें जिससे एतमाद की फिजा उलमा में भी पैदा हो, अवाम में भी एतमाद की फिजा पैदा हो। इन चीज़ों से कौम जो है वो जहनी अपना कहते हैं खलफिशार का शिकार हो चुकी है। लिहाजा जो लोग दानिस्ता ये कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ खुदारा वो किसी के एजेंडे पर अमल ना करें, कौम में इत्तेहाद और वहदत की बात करें, और जो गैर दानिस्ता तौर पर ये इकदाम कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो जो है वो ऐसे जो है इकदाम ना करें कि जिसकी वजह से कौम में कैद की इत्तेहाद की और वहदत की फिजा ख़त्म हो। हमें चाहिए कि हमें इत्तेहाद और वहदत, जितना हमारा इत्तेहाद और वहदत मजबूत होता जाएगा काम उसका, उतना ही जो है पाकिस्तान में तशय्यु के मसाइल जो है वो आसान होते चले जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये इत्तेहाद और वहदत वाहिद रास्ता है दुश्मन के मुकाबले में। अगर मुत्तहिद होकर हम कोई इकदाम करते हैं बिला तफरीक किसी शख्स किसी फ़र्द किसी ज़ात के लिए नहीं बल्कि तशय्यु के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज़ादारी सय्यिदुश्शुहदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा एक मौक़िफ़ होना चाहिए। अगर जमातें अलग हैं कोई मसला नहीं है, जमातें हैं गिरोह है उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब तशय्यु पर कोई बात आए तो एक मौक़िफ़ एक लाइन ऑफ एक्शन और एक जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए जिससे तशय्यु का तहफ़्फ़ुज़ हो सके।
देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें जिन मुश्किलात का सामना है जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें ये सारी जमातें मुख्तलिफ मजहबी जमातें आपने मिल्लत तशय्यु की जो तंजीमें हैं वो मिल बैठ के आपस में हमंगी के साथ इत्तेहाद और वहदत के साथ इन आपस के करीब हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिलें बैठें और खाम खा की जो गलत फहमी हैं जो दूरियां हैं जो बदगुमानियां हैं उसका इजाला होना चाहिए। जितना ये मिलना मिलाना ज़्यादा होगा ये आपस की जो खाम खा की बेबुनियाद बातें हैं ये भी ज़ायल हो जाएंगी
और इसी इत्तेहाद में इंशाअल्लाह बरकत होगी। कुरान कहता है इन तंसरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे खुदा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, खुदा इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर है।